अपने स्थिति में आओ, आत्मिक स्वरूप में, क्योंकि बाबा हमेशा आत्मा को ही दृष्टि देता है, आत्मा को देखता है, आत्मा को ताकत देता है। फिलहाल भले एक सेकंड के लिए से बिंदी को इमर्श करो, बाप दृष्टि देगा, दृष्टि से भरपूर हो जाओ। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते, सबकी खातिरी करते रहो। प्रश्न है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो? उत्तर है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। यह आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम जानते हो अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैकरीन। सैकरीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तब तो गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप, तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशुक होता है। यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप, तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशुक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं, तब तो गायन भी है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमोप्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे यानि लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊँचते ऊँच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो ज़रूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे, शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं, अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज़ सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ, मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो, तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। देखो बच्चों, ड्रामा है इसलिए बात बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ समर्पित हो जाओ, मैं सिर्फ मेरे बच्चों को कह रहा हूँ। मेरे बच्चे मेरा महावाक्य पहचानेंगे, और वो कहाँ भी हो इस संसार में, वो पहुँच जाएंगे, मेरे बन जाएंगे, मेरे हैं वो, मेरे मेरे पास आएंगे। सारा संसार त्याग कर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो भक्ति में होंगे तो भक्ति से निकलेंगे, ज्ञान में होंगे तो ज्ञान से निकलेंगे, क्योंकि मेरे हैं वो। मेरे बच्चों को निकालने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं परायों के बच्चों को नहीं निकालूंगा। मैं क्यों कहूँ ना दूसरों के बच्चों को कि समर्पित हो जाओ, मुझे पहचानो, मैं आया हूँ। मैं बस मेरे बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि मैं आया हूँ, पहचानो। और मेरा बच्चा रुकेगा नहीं, मेरे बच्चे का मोह मुझ में ही है, मेरे बच्चे का मोह मैं जानता हूँ, उसे पहचानता हूँ, उसे बल देर लगेगी पर वो निकलेगा। जिस दिन उसे पता चला बाप आया है और बाप ने कहा समर्पण, वो निकलेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और बच्चों मैं बताता हूँ साफ, जिसे रोका जा रहा है और वो रुकने से रुक रहा है, वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं। अब समझ जाना, जिसे किसी भी प्रकार का बंधन रोक रहा है वो मेरा नहीं है। मेरा बच्चा बस मैंने एक बार कहा, उसने किया, बात समाप्त। ये मेरा वचन, न मैं किसी को उकसा रहा हूँ, न किसी को बता रहा हूँ कि ये करो तुम, नहीं बच्चे, मैं बस मेरे बच्चों को खोज रहा हूँ, बाप के सच्चे बच्चे, जिन्हें पता है बाप है, निकलेंगे तत्क्षण, भले आज शायद वो ज्ञान में नहीं है, आज मेरी मुरली नहीं सुन रहा है, कभी किसी दिन ये मुरली सुनेगा और सुनकर तुरंत निकलेगा, देरी नहीं लगेगी, क्योंकि वो भी मेरे खोज में है, मैं भी उसी की खोज में हूँ। इसलिए मैं मुरली सबके लिए नहीं चलाता बच्चों, जैसे मैंने कहा ना, मेरा याद प्यार सबके लिए नहीं है। अव्यक्त वाणी में देखो लास्ट में किसके लिए कहा है, जो जो टाइटल है उन्हीं के लिए याद प्यार है। उसी प्रकार ये जो समर्पण की बात बाप बार बार करता है, वो सबके लिए नहीं, वो सिर्फ मेरे जो अपने हैं उन्हीं के लिए है, उन्हीं बच्चों के लिए। वो निकलेंगे, फिर वो कहाँ भी हो इस दुनिया में, वो निकलेंगे, वो मुझे पहचानेंगे और निकलेंगे। वो मेरे पास नहीं आएंगे कहने के लिए कि बाबा नौकरी का क्या करूँ, धंधे का क्या करूँ, घर परिवार, बिजनेस, ये वो, बैंक बैलेंस, जायदाद, कैसे छुटकारा पाऊँ सबसे। मेरे पास आएंगे नहीं, सीधा छूट कर आएंगे, सीधा छूट कर। वो मुझे कारण नहीं देंगे, ये राजी नहीं, वो राजी नहीं, ये कह रहे वो कह रहे, नहीं नहीं, ये मेरे नहीं, मेरे बच्चे मतलब मेरा महावाक्य सुनेंगे, समझ में आएगा ये हमारा पिता है, और सीधे आ जाएंगे। उनका कोई संसार का रोना धोना लेकर यहाँ नहीं आएंगे वो किसी भी प्रकार से, वो सीधे आ जाएंगे डायरेक्ट, वो मेरे बच्चे। और ऐसे बच्चों को लेकर बाप विश्व परिवर्तन करेगा, हरजानी जितने भी मास लगे, पर मुझे वही चाहिए पक्के वाले, जितने भी मास लगे, मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे वही पक्के चाहिए। क्या करूँ मैं बाकी बच्चों का? तेरे समर्पण को लेकर एक कारण भी है, एक कारण, तू मेरा नहीं है, मैं सीधी बात कहता हूँ, तू मेरा नहीं, और तेरा समर्पण विश्व कल्याण के काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, स्व कल्याण हो सकता है, विश्व कल्याण नहीं होगा। समझ है बच्चों, तुम अपने आप को देखो, मेरा बच्चा मन असोचता डायरेक्ट कूद जाएगा, पता चला बाप है, वो रुकेगा नहीं, वो डायरेक्ट कूदेगा, खबर मिली ना बाबा है, क्या रुकना है। मैं उन बच्चों के लिए मुरली चलाता हूँ, और उन बच्चों के लिए मैं कहता हूँ जल्द से जल्द बाप के बनो, बाकियों के लिए नहीं कहता मैं, बाकियों को जो करना है करें। जिन्होंने मुझे वन शॉट में पहचान लिया, एक झटके में, ये बाप है, ये कोई और नहीं हो सकता, ये बाबा है, ये कोई बच्चा नहीं है, ये बाबा है, ये कोई आत्मा नहीं, ये परमात्मा है, बस बात खत्म हो गई। बाबा कहते है या नहीं है, हमें नहीं लगता बाबा है, ऐसे सारे निकलेंगे, उनके ऊपर मैं भी नहीं सोचता, मैं क्यों सोचूं बच्चे, वो भी तो व्यर्थ है ना, व्यर्थ तो मैं कभी चलाता नहीं किसी भी प्रकार से, इसलिए मेरे बच्चे तत्क्षण निकल जाएंगे, देरी नहीं लगेगी निकलने में किसी भी प्रकार से, इसलिए मैं भी शांत हूँ। मैं जानता हूँ मेरे वाले मुझे पहचानेंगे, मैं कौन हूँ, इस तन में बैठा हुआ, और मेरे बन जाएंगे, देरी नहीं लगेगी, देरी किस बात के लिए। और वो बहुत मुश्किल निकलेंगे, क्योंकि सभी मोह के धागों में बंधे हुए मैं जानता हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए। तुम्हारा मोह तुम्हें मुबारक हो। मैं क्या करूं बच्चे, मुझे निर्मोह ही चाहिए। यहां के निर्मोह ही नहीं बनना है, निर्मोही बनकर यहां आना है। समझ है बच्चे, ये कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है मेरा, यहां आके तुम अपना मन बुद्धि संस्कार का कचरा डंप कर दो। नहीं भाई, यहां सीधा विश्व कल्याण का कार्य चलता है सीधा। इसलिए जब भी समर्पण की बात आती है ध्यान में रखना, मैं मेरे वाले बच्चों को कह रहा हूं, परायों को नहीं कह रहा हूं। पराये कौन बच्चे, जो ज्ञान लेते और अपने जीवन बनाते। अपने कौन, ज्ञान मिले ना मिले बाप का बनना है, वर्षा मिले ना मिले बाप का बनना है, कुछ प्राप्ति हो ना हो बाप का बनना है, अपने घर तक पहुंचना है। जिनको खींच होगी कि जहां बाप बैठा है वही मेरा घर है इस संसार का, बाकी इस संसार में मेरा कोई घर बार नहीं है, नौकरी धंधा तो है ही नहीं, वही मेरा माता पिता है। गाते हो ना, तुम्हें वो माता श पिता तुम्हें वो, कहाँ गया तुम्हारा। ये बच्चे आएंगे, तुम्हें वो बंधुश सखा तुम्हें वो, ये बच्चे आएंगे जिनको पता है ये हमारा बाप है। फिर उससे लेन देन की बात ही नहीं आएगी कि उससे कुछ ज्ञान मिले, कुछ शक्तियाँ मिले, कुछ भरपूरता मिले, नहीं नहीं ये सब झंझट नहीं होता उसमें। बस बाप मिले, बाबा मिला बात खत्म हो गई। जैसे कोई घने जंगल में खो जाता है और उसको एक ही आश होती है, मैं मेरे घर पहुंच जाऊँ जहाँ मेरे माता पिता बैठे हैं, एक ही आश होती। ये ऐसे बच्चे हैं, उन्हें पता है कि वो घने जंगल में खोए हुए हैं और बाबा बैठा है माउंट में, आबू में, वही हमारा घर है, वही हमारा माता पिता है। कब जाए घर और बाप के पास बैठे, क्योंकि जंगल में हम खोए हुए हैं, जंगली जानवर है बहुत, समस्याएं है बहुत। उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, मैं साफ कह रहा हूं कि उन बच्चों के लिए मैं समर्पण की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन बच्चों को ज्ञान समझ में नहीं आता। ध्यान में रखना, मेरे जो बच्चे हैं उन्हें ज्ञान समझ में नहीं आता, उन्हें बस एक शब्द समझ में आता है, समर्पण, एक ही शब्द। और जैसे वो बच्चे मेरी कोई भी मुरली सुनेंगे जिसमें समर्पण शब्द इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है, वो शब्द सुनते ही वो समझ जाएंगे ये कोडवर्ड है बाप का, ये बाप बैठा है यहां, समर्पण ये कोडवर्ड है परमात्मा, वो तुरंत आ जाएंगे। एक अक्षर सुनकर, वो एक शब्द, उनका कोडवर्ड मैं दोहरा रहा हूं बार बार उनके लिए, मैं सबके लिए नहीं दोहरा रहा हूं, क्योंकि सभी मेरे नहीं है। मैं सबका हो सकता हूं पर सब मेरे नहीं। मुझे याद सभी करते पर मैं याद सभी को नहीं करता, मैं थोड़ों को करता हूं जो मेरे हैं, वो मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं उनके लिए कह रहा हूं, बाकी जिनके परिवार में मुरली सुनी जा रही है वो दिल पर ना ले। मैं आपके परिवार के लिए मुरली नहीं सुना रहा हूं, ना आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए मुरली सुना रहा हूं कि आपके परिवार का कोई सदस्य समर्पित हो जाए। नहीं भाई, मैं मेरे बच्चे के लिए सुना रहा हूं और मेरा कोडवर्ड एक ही है, समर्पण, एक ही है। वो समर्पण वर्ड मैं बार बार रोज मुरली में इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन सी मुरली कौन सुनेगा और किसको वो कोड वर्ड समझ में आएगा और वो यहाँ भाग के आएगा, कह नहीं सकते। इसलिए रोज वो शब्द आता है मुरली में, रोज। तो बच्चों आप दिल पर नहीं लेना कोई, मैं आपके लिए नहीं सुना रहा, मैं उनके लिए सुना रहा हूँ, और अगर आप होंगे तो आप निकलेंगे उस बात को सुनकर, और नहीं होंगे तो नहीं निकलेंगे। इसलिए बाबा किसी के पीछे नहीं लगता, तो समर्पित हो जा, समर्पित हो जा। नहीं बच्चे, ये ऐसे पकड़ पकड़ के धर्म परिवर्तन थोड़ी होता है क्या, ऐसे नहीं होता। जो जिस धर्म के वो निकल जाएंगे, जहाँ पर पकड़ पकड़ के थोड़ी, वो तो पाप लग जाएगा बच्चे, पकड़ पकड़ के धर्म परिवर्तन किया तो किसी का पाप हो जाएगा, समझ की बात है। अधर्म हुआ वो, अधर्म से धर्म का नहीं बनाया जाता। जो जिस धर्म का होगा अपने आप निकल जाएगा, बीज अंदर पड़ा हुआ है। और बच्चों आज क्या हुआ है पता है संसार में, कोई नहीं जानता। एक परिवार में माया का अंतिम दाव है, एक परिवार में सारे धर्म की आत्माएं बैठी हैं, सारे धर्म की। आपके घर में 5 सदस्य हैं, भले एक धर्म में चल रहे पर वो 5 धर्म की है, एक नहीं है। मुश्किल कोई निकलेंगे, एक दो, दो तीन, या कोई पूरा परिवार, मुश्किल जो एक ही धर्म का होगा, एक ही धर्म का, आदि सनातन देवी देवता, ऐसी बात है बच्चे, मुश्किल। वरना आप समझ जाना, एक घर में माया ने बिठाया है, इसलिए एक घर में मत नहीं मिलती परिवार के किसी सदस्य के। जब भी मत नहीं मिलती, समझ जाना अलग अलग धर्म से आई हुई आत्माएं हैं, अलग अलग धर्म की है, अलग अलग मठ पंथ की है, इसलिए मत नहीं मिलती। और तुम सोचते हो वो चले तो हम चलेंगे, वो आए तो हम आएंगे, वो कभी नहीं आ सकेंगे। वो वही जाएंगे जिस धर्म के हैं वो। माया का अंतिम दाव है बच्चे, अंतिम, लास्ट। इसी दाव से माया खेल रही है। और भले वो आदि में जब से आपके साथ चल रहे, आपको लगता होगा कि आपके आदि सनातन देवी देवता धर्म के चल रहे हैं, पर माया ने कब आत्मा बदल दी तुझे भी पता नहीं, माया ने कब एनर्जी चेंज की तुझे भी पता नहीं, तू भी नहीं जानता। इसलिए बाप कहता है एक परिवार से मुश्किल एक निकलेगा, दो निकलेंगे, मुश्किल। सारा परिवार भूल ही जाओ बच्चे, सारा परिवार, समझ। और तो और ऊपर से मैं लिख के देता हूं, एक पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है, मुश्किल निकलेंगे, मुश्किल। पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है तो पूरा परिवार सतयुग में आए, पॉसिबल नहीं। आधा त्रेता में होगा, आधा सतयुग में होगा, लिख के लेना मुझसे। या फिर परिवार से मुश्किल एक दो सदस्य होंगे जो सतयुग में होंगे, बाकी सब त्रेता में होंगे, मैं लिख के देता हूं। और बाकी अलग अलग धर्मों की तो बात ही छोड़ दो, सतयुग में आना भी मुश्किल है, और सतयुग में भी आए एक परिवार से तो आदि में दोनों या चारों साथ नहीं आ सकते, पूरा परिवार, मुश्किल है बच्चे। इसलिए तुम अपनी परवाह करो, रामा माया ने विचित्र किया है बच्चे। बता, जैसे कहते हैं आजकल की बहुत सारी मूर्तियों में भूत प्रेत पिशाच वेताल प्रवेश हो जाते, अरे बच्चे तुम मनुष्य रूप में हो तो तुम में प्रवेश होने में देरी लगेगी, तुम्हारे में डालने में समय नहीं लगेगा, मूर्ति में डाला जा रहा है। माया इतनी चतुर है कि मूर्ति में प्रवेश करा रही, समझ है। देखो कभी सुना है करौली सरकार जी का ज्ञान, बताते हैं वो। अभी श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान ने भी कहा कि ऐसे ऐसी बात होने की संभावना है, बात पॉसिबल है बच्चे। इसलिए तुम तो मनुष्य हो, तुम में प्रवेश कराने में टाइम नहीं लगेगा माया को, किसी और को, तुम्हारे परिवार के सदस्यों में प्रवेश कराने के लिए टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं बस मेरे बच्चों को बुला रहा हूं, मेरे वाले कोड़वड़े के समर्पण, न उन्हें आत्मा पता है, न परमात्मा जानते हैं, न धारणा जानते हैं, न सेवा जानते हैं, न ज्ञान योग जानते हैं, वो बस एक ही कोड़वड़ जानते हैं, समर्पण। क्योंकि समर्पण कोई कहता नहीं, कौन सा गुरु कह रहा है बताओ समर्पण। इस दुनिया में कौन सा गुरु या कौन सा संत महात्मा कह रहा है समर्पण, समर्पण के ऊपर कौन जोर दे रहा है बताओ? इस संसार कोई नहीं है, हिम्मत ही नहीं किसी की समर्पण की बात करने की, कोई जोर दे भी नहीं सकता। समर्पण की बात सिर्फ भगवान करता है और कोई कर नहीं सकता। समझ की बात है बच्चे, जहां जहां समर्पण की बात हो रही है समझ जाना वहां भगवान बैठा है। फिर वो अनेक रूप लेकर अनेक जगहों पर बैठ सकता है। समर्पण और किसके लिए वो भी ध्यान में रखना, तेरे लिए समर्पण की बात हो रही तो भगवान बैठा है, वो अगर अपने लिए समर्पण की बात कर रहे हैं तो वहां भगवान नहीं है। वरना समर्पण शब्द आज से मेरा कोई भी इस्तेमाल करेगा और आप वहम में आ जाओगे भगवान बैठा है नहीं, तेरे उद्धार के लिए कह रहे कि समर्पण तो भगवान है, उसके कार्य के लिए कह रहे समर्पण तो भगवान नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे मैं तुम्हें नहीं समर्पण कह रहा हूं, दिल पे नहीं लेना, मैं तो मेरे बच्चों के लिए कह रहा हूं, मेरे बच्चों के लिए। समझ है? क्योंकि क्या है ना बच्चे, इस जंगल में मेरे बच्चे खो गए और कोड वर्ड एक ही है समर्पण। मैं छुप तो नहीं रह सकता, मैं जंगल में शांत बैठूं तो बच्चों को रास्ता कैसे मिलेगा? मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पर है, न वो जान पा रहे कि मैं कहाँ बैठा हूँ। इसलिए मैं बार बार आवाज़ दे रहा हूँ समर्पण समर्पण समर्पण, तो वो उन तक आवाज़ पहुँचेगी और उस आवाज़ की दिशा में दौड़ कर आएंगे। मैं उन्हें ये कोडवर्ड बता रहा हूँ समर्पण, तुम्हें नहीं कुछ कह रहा। इसलिए तुम जो सुनने वाले हो दिल पे नहीं लेना, तुम्हारा पार्ट नहीं है वो, तुम्हारा पार्ट नहीं। समझ? क्योंकि मुझे पहले वो बच्चे चाहिए, जब वो मेरे बच्चे आएंगे मैं मिलन खोल दूंगा। अभी कहा ना मैंने, मैं बाबा मिलन खोल दूंगा, आत्मा परमात्मा राजयोग भट्टी खोल दूंगा, पर पहले मुझे मेरे बच्चे चाहिए, पहले मैं मेरे बच्चों को प्रवेश दिलाऊंगा, उसके बाद सारा संसार भले आ जाए मुझे कोई परवाह नहीं। और अगर तुम पहले हो तो तुम आ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैंने पहला दूसरा नंबर लगाया नहीं किसी का। तुम अगर पहले हो तो तुम पहले आ जाओ, तुम अगर मेरे हो तो तुम आओ। इसलिए जिस समय वो आंकड़ा पूरा हो जाएगा मैं बाबा मिलन खोल दूंगा, फिर पुरुषार्थ करो 15 दिन का, 1 मास का, और मिलन में आ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। समझ की बात? और मैंने जो कहा है ना कि मेरा ज्ञान मत सुनो, श्रीमत दिया ना मैंने, वो किन के लिए, किन के लिए दी पता है? जो मेरे ज्ञान से बनना चाहते हैं, मेरा ज्ञान लेकर बनना चाहते, अपने जीवन को बनाना चाहते, पर विश्व सेवा नहीं करना चाहते, विश्व के लिए नहीं जीना चाहते, विश्व का कल्याण नहीं करना चाहते, उनके लिए मैंने श्रीमत दी है कि मेरा ज्ञान नहीं सुन सकते, अलाउड नहीं। तुम किसके लिए मेरा ज्ञान सुन रहे हो जरा बताओ, तुसी खुद के लिए या विश्व के कल्याण के लिए? किसके लिए ज्ञान सुन रहे हो तुम ही चेक करो। मैं तो विश्व कल्याण के लिए ज्ञान दे रहा हूं, विश्व कल्याण के लिए, और तू मेरा ज्ञान सिर्फ तेरे इस्तेमाल में लगा रहा है। बताओ ना कौन सा स्कूल कॉलेज है जो उसके लिए बना है? हर स्कूल कॉलेज खुला है देश की सेवा करने के लिए, फिर वहां से एक इंजीनियर निकले या लेबर निकले, हर कोई क्या चाहता है मना सरकार कि यहां से जो भी निकले वो देश की सेवा करे। सरकार ने क्या फ्री में कॉलेज खोल के रखे, स्कूल खोल के रखे? किसी भी प्रकार से मदद करो सरकार को, देश को, और देश का भला करो। देश का भला हुआ तो दुनिया का भला होगा। चलो बच्चे कुछ नहीं बन सकते तो फार्मर तो बन सकते हो, खेती तो कर सकते हो, खेती के रूप में सरकार को मदद कर सकते हो। चल इंजीनियर नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना, लॉयर नहीं बना, आईएएस नहीं बना, फार्मर तो बन सकता है। इसलिए सरकार हर प्रकार की कोशिश करता है कि हर प्रकार का स्कूल कॉलेज खोले ताकि सबका विकास हो जाए। बाप भी यही कह रहा है, सबके विकास के लिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ, और तुझे अपने लिए ज्ञान लेना है तो मेरा ज्ञान ना सुन, अलाउड नहीं मेरा ज्ञान सुनना। मेरे अपने कायदे हैं भाई, मेरा ज्ञान है, तुझे जहाँ से सुनना है सुन। सीधी श्रीमत है, विश्व सेवा करने वाला है तो बोल, तो मेरा ज्ञान सुन, और नहीं करनी है तो वो जहाँ चढ़ेगा, तू तेरे लिए ज्ञान लेगा, फिर करेगा क्या उस ज्ञान का, अहंकार आएगा बच्चे। समझ है बहुत बच्चे। बाबा जब कहता है कि आज से मेरी मुरली नहीं सुनना जब तक तू मेरा नहीं बनता, बना मुरली ना सुने चलेगा, इसके लिए राजी है कि ठीक है बाबा ने श्रीमत दिया आज से मुरली नहीं सुननी है, इसके लिए राजी है, पर मेरा बनने के लिए राजी नहीं। अजीब बात है भाई, कैसा ज्ञान है तेरा, और मेरा भी क्यों बना रहा हूं, ताकि तू विश्व की सेवा कर सके, विश्व को सही राह दिखा सके, उनका उद्धार कर सके। मना सबकी खोपड़ी उल्टी कर दी है माया ने, उल्टी खोपड़ी वाले बन चुके सारे के सारे, ऐसी अवस्था हुई है। इसलिए मैं सिर्फ मेरे बच्चों को आवाज लगा रहा हूं। समझ है बच्चे, बता, एक बाप के 5 बच्चे जंगल में खो गए, दूसरा पिता है उसके 3 बच्चे, दोनों भी अपने बच्चों को खोज रहे, तो ये पिता भी आवाज दे रहा है, वो पिता भी आवाज दे रहा है, तो जिसके बच्चे हैं उसकी आवाज सुनकर उसके बच्चे उसकी ओर अपने आप जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि वो अपने पिता की आवाज को पहचानते हैं कि ये हमारे पिता की आवाज है। एक है माया, एक है बाप, दोनों के बच्चे खोए हुए हैं। माया उसके बच्चों को आवाज दे रही है, मैं मेरे बच्चों को आवाज दे रहा हूं, माया उसके बच्चों को आवाज दे रही है, संसार, नौकरी, धंधा, एजुकेशन, प्रोफेशन, जायदाद, जमीन, प्रॉपर्टी, माया आवाज दे रही, करियर, बाप आवाज दे रहा है, समर्पण, जिसके उसके पास चले जाएंगे, जिसके बच्चे हैं। तुम चेक करो तुम किसके हो, माया के होंगे तो उसकी बात समझ में आएगी, नौकरी, धंधा, घर, परिवार, एजुकेशन, प्रोफेशन, बैंक बैलेंस, जमीन, जायदाद, वर्षा, लौकिक, तुम्हें समझ में आएगा, और मेरे होंगे तो तुम्हें समर्पण शब्द समझ में आएगा। तुम किसके हो तुम चेक करो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे लक्षणों से तुम किसके बच्चे हो, अपने आप। समझ की बात है बच्चों, सारे के सारे। इसलिए समर्पण जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए, किसी और के लिए नहीं। कोई भी मेरी मुरली आज सुने दिल पे ना ले, और मैंने तो नहीं कहा तुम्हें कि तुम मेरी मुरली सुनो, मेरा ज्ञान तुम्हें तीखा लगता है तो वो तुम्हारी समस्या है, तुम्हें किसने कहा सुनने के लिए, बाहर बहुत गुरु है उनको सुनो, मुझे क्यों सुन रहे हो भाई, मतलब मेरा ही ज्ञान सुनकर मेरे ही ज्ञान पर तुम कमेंट कर रहे हो, अजीब बात है, बोझा चढ़ेगा बच्चे। हाँ मैंने कहा होगा कि ये सुनो, फिर तुमने सुना, फिर तुम्हें कमेंट करने का अधिकार है, मैंने तो नहीं कहा किसी को कि तुम मेरा ज्ञान सुनो। पाप चढ़ता है बच्चे, पाप चढ़ता है, हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है इस दुनिया में, जिसको जो मर्जी वो बना रहा है, चल रहा है, तुम उसके किसी भी बात पर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका पार्ट है, तुम्हें किसने कहा उसको सुनो, उसको देखो, उसको जानो समझो? वो तो नहीं आया कहने के लिए। समझ की बात है बच्चों, सारी सारी। इसलिए मैं क्लियर करता हूं, मैं मेरे बच्चों को आवाज लगा रहा हूं, समर्पण ये मेरा कोड वर्ड है। मेरे बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे, जैसे मेरा आंकड़ा पूरा होगा बाबा मिलन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगी विंडो, क्लोज हो जाएगी परमानेंट। क्योंकि जब उतने बच्चे यज्ञ में पक्के हो जाएंगे तब यज्ञ अलग दिशा में बाप लेके जाएगा। जैसे आदि में भी कितने थे, उसमें से कितने बचे, उसमें से भी कितने पक्के हुए, फिर बाबा ने यज्ञ को विस्तार में लेके जाने की सेवा स्टार्ट की। उसी प्रकार यह आदि स्वंत होगा, पक्के रहेंगे, पक्के बनेंगे, फिर बाप उन्हें पक्के रूप से पक्का बनाएगा और फिर वो दुनिया का उद्धार करने के लिए निकलेंगे। ऐसे बाकी सुने अपने घर से, उनको जो अच्छा लगे करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मैं बस मेरे को ढूंढ रहा हूं, मेरे बच्चे, मेरे वाले अपने बच्चे, उन्हें समझ में आता है। और वो बच्चे ऐसे है बच्चों, उन्हें तत्क्षण तीर लगेगा बाबा बैठा है। अब देखोगे उनकी हालत अलग होगी, स्थिति अलग होगी, बस मेरा बाबा, उन्हें और कुछ पता नहीं होता। ऐसे मेरे वाले बच्चे, बाकी वो कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। सारी समझ की बात है बच्चों, सारी के सारे वंडरफुल ड्रामा है। तो मेरे बच्चों के लिए मैं ज्ञान दे रहा हूं, जब समय आएगा तो दुनिया के लिए दे दूंगा मैं। ऐसे शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है, बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं, जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलॉय यानी खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है, तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रिया कभी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बच्चे पहले बात से रिलेटेड एक बात याद आई इसलिए बता रहा हूँ। बाप क्यों कहता है परमत ना सुनो, मनमत पे ना चलो? मूर्तियों में शैतान बैठ सकते हैं तो जिसकी परमत सुन रहे उसमें क्या बैठा है? मनमत देने वाला तुम में कौन बैठा है? बस सार समझो, तुम्हें मनमत देने वाला तुम में कौन बैठा है जो घड़ी घड़ी तुम्हें कहता है ये नहीं वो करो? 10 मुरली करने में आलस से अलबेलापन लाने वाला कौन बैठा है? 10 मुरली नॉर्मल रूप में करो तो 200 मिनट, 3 सवा 3 घंटा। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो तो 150 मिनट, 120 मिनट जो भी होंगे, 2-2.5 घंटे का पुरुषार्थ नहीं होता। ड्रिल 21 मिनट की 21 बार, आत्मिक स्थिति 1 घंटे की, 1 घंटे का मौन, रहम दिल कमेंट्री 20 मिनट की, 24 घंटे तो है तुम्हारे पास, फिर 2-3 घंटे का अपने उद्धार का पुरुषार्थ करना नहीं होता, 2-4 घंटे, 5-6 घंटे जो भी जाए, उद्धार तो तुम्हारा ही होगा ना उससे, तो उतना सा पुरुषार्थ नहीं हो पाता। तो तुम्हें अच्छे कर्मों में आलस्य अलबेलापन कौन ला रहा है, थका कौन रहा है, कौन ला रहा है, योग में नींद कौन ला रहा है, कौन सुला रहा है तुम्हें, आत्मिक स्थिति में योग में कौन सुला रहा है। संभल कर रहना उससे, उस शैतान से। इसलिए बाप कहता है बस श्रीमत, बस श्रीमत। अगर शैतान ने तुम्हें चलाया तो क्या बचेगा बच्चे, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। समझ है बच्चों। और थोड़े समय के बाद अभी बाप सभी बच्चों को बताना चाहता है। जैसे बच्चे कभी कहते हैं बाबा हमारे मन में कौन विचार देता है, समझ में नहीं आता, थोड़े समय के बाद एक ऑर्डिनेंस निकलेगा, जो श्रीमत पर चलता है, मतलब जिसके मन में दूसरा विचार भी नहीं आता वही बाप के साथ चल पाएगा। तैयार रहना सभी बच्चे, समर्पित, बी रेडी। मैं तुम्हारे शैतान को चलाता रहूं क्या तुम्हारे लिए? तुम भी जाओ और तुम्हारा शैतान भी जाए, मुबारक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संभल कर रहे ना सब के सब, पर दिन ब दिन ये शैतान प्रबल होगा। इसलिए जो हठ वाले होते हैं ना, जिद वाले होते हैं, शैतान बैठा है, शैतान बैठा, वो अपनी अकड़ में आएंगे और ऊपर से वो ये भी कहेंगे आपको कि समझ में नहीं आता हमें, हमसे कैसे हो जाता है, कौन कराता है, इससे ज़रा दूर रहना, क्योंकि उसका शैतान तुम पर कब हावी होगा गारंटी नहीं बच्चे, तुम्हें कब वो प्रभावित करेगा उसकी गारंटी नहीं, उसकी कभी कोई बात नहीं मानना, कभी नहीं मानना, क्योंकि वो सीधा कह तो रहा है ना तुम्हें कि उसे कौन चला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम जरा दूर रहना इससे, लगने दो, जरा स्विच चुभने दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने दो उसे, संगठन से बाहर करेंगे थोड़े समय के बाद इसे। क्या मैं तेरे शैतान को संभालता बैठूं, मुझे मेरा कार्य करना है विश्व कल्याण का, तू भी ना रहे और तेरा शैतान भी ना रहे यहां पर, समझ की बात है, मुझे कार्य पूरा करना है। श्रीमत समझ में आती है तो बोल, नहीं आती है तो निकल, मैं सीधी बात कहता हूं और दोबारा नहीं आना यहां, ये भी नहीं कहूंगा शैतान निकलने के बाद आना, बिल्कुल नहीं आना यही कहूंगा मैं। इसलिए थोड़े समय की मार्जिन है, तुम्हारे मन में मनमत भी चलेगी तुम्हारी यह यात्रा बंद हो जाएगी, मन मत चली तो भी, संभल कर रहे ना, मैं साफ कहता हूं, परमत तो अलाउड ही नहीं, और बाप ने बोल दिया है और बाप कुछ करता नहीं, सब ड्रामा करता है और माया करती है, बाप की ऑर्डर और इन दोनों का करना, बी रेडी फॉर एवरीथिंग, तैयार रहे ना बच्चे, मैं नहीं संभालूंगा, क्यों संभालू, क्योंकि क्या गारंटी तेरा शैतान कब हावी हो जाए दूसरों पर, कब दूसरों को प्रभावित करें। बहुत बच्चे जो मनमत परमत पर चलने वाले, सब पर शैतान निवास करता है, शैतान, श्रीमत पर चलने वाले ही बाप बैठा है वहां, बाकी सब शैतान निवास कर रहा। इसलिए बाप ने पहली धारणा दी, नो मन मत, नो पर मत, इन दोनों से दूर रहना है। श्रीमत जितना बोले, जो बोले, जब बोले, उतना ही करना है, उतना ही करना है। और बच्चों ध्यान में रखना, तेरे अंदर का शैतान तुझसे मन मत चला रहा है, पर मत दे रहा है, बोझा तुझ आत्मा पर। हाँ, शैतान पर कोई बोझा नहीं चढ़ता, बोझा तुझ पर ही चढ़ेगा। तू कहाँ था फिर, तू क्या कर रहा था? वो शैतान तुझे चलाए तो तू क्या कर रहा था? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? बच्चे अभी सोचो, आप मेरे साथ चलते, आपके अंदर मनमत आ सकती है, तो जो संसार में चल रहे उनका क्या होगा, उनका क्या होगा? वरना स्वयं मैं यहां बैठा हूं साकार में, दिन भर में यहां ज्ञान चल रहा है, तपस्या चल रही, फिर भी माया मनमत दे रही है, तो जो संसार में है उनको तो भूल ही जाओ, उनकी तो हालत ही खराब हुई होगी। कितनी माया होगी विचार करो, माया के अलावा कुछ भी तो नहीं होगा संसार में। इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए बाप कह रहा था समर्पण, बाकी मैं कोई कहता नहीं हूं, मैं तो मेरे बच्चों को आवाज देता हूं। क्योंकि हर किसी के अंदर जो शैतान बैठा है वो हर किसी को नीचे दबाना चाहता है, उसको पतन करना चाहता है, उसको खलास करना चाहता है। एक ही बात है बच्चे, उस शैतान का एक ही उद्देश्य है। पूछो ना अपने लौकिक परिवार वालों को कि परमात्मा के लिए हम समर्पित हो रहे, अच्छे मार्ग पर जा रहे, तो बुराई क्या कर रहे, बुरा क्या कर रहे हो, तो जरा बताओ। वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि शैतान क्या बताएगा उनके अंदर का कि आप बुरा कर रहे हो, वो चुप रहेंगे। पर अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, वो आपके सवाल का उत्तर नहीं देंगे, बुरा क्या कर रहे हो उसका, वो घुमाएंगे आपको। वो शैतान है जो घुमा रहा है। अच्छा करने से रोकने वाला शैतान होता है बच्चे, अच्छा करने से रोकने वाला, यही तो चल रहा है संसार में। और तू क्या कर रहा है? तू शैतान के बोल में प्रभावित हो रहा है। अब तू सबसे बड़ा शैतान हो गया, क्योंकि शैतान की बात तुझे समझ में आ रही है। भगवान जो कह रहा है तेरे कल्याण अर्थ, विश्व के कल्याण अर्थ, वो तुझे समझ में नहीं आ रहा है, शैतान समझ में आ रहा है। अब क्या कहूं मैं और अब क्या समझाऊं मैं तुझे? कुछ समझा भी तो नहीं सकता। तू इतना ज्ञान ले रहा है, इतनी मुरलियां सुन रहा है, इतनी श्रीमत पालन कर रहा है, तुझ में शैतान प्रवेश हो सकता है, तो उनकी बात छोड़ ही दे बच्चे, उनको तो भूल ही जा, जो अब तक ज्ञान में ही नहीं है, ज्ञान की एबीसीडी भी पता नहीं उन्हें, और तू उनकी बोल से रुका है, तू उनकी बोल से चल रहा है। समझ है, यही तो बात है। तू ही चेक कर, तू भगवान की सुनता है या शैतान की मानता है, तू ही चेक कर। मैं क्या कहूँ बच्चे तुझे, तू ही तेरा न्याय कर, तू ही तेरा वकील बन, तू ही तेरा जज बन, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तू ही तेरी सरकार, तुझे जो ठीक लगे कर। समझ की बात है। इसलिए परमत से दूर रहो बच्चे, और मन में मनमत जो उछलेगी उसको भी नहीं करना है। मैं कह रहा हूं ना लंबे समय से, मन में जो आए ना करो। बाप कहेगा 10 मुरली करो, और तुम्हारे अंदर का शैतान कहेगा 2 मुरली के बस हो गए, अभी 6 घंटा योग करते हैं ना, श्रीमत है मुरली की और शैतान योग करा रहा है। किसकी मत से तुम 6 घंटा योग कर रहे हो, किसकी मत है वो? वो कहेंगे नहीं, योग करना तो अच्छा है ना, बाबा को याद करना कहाँ बुरा है, तेरी पात्रता है, योग होता है। तुझे मैं जिस दिशा से ऊंचा उठा रहा हूं उससे उठ। 10 मुरली कहा है तो 10 मुरली, 21 ड्रिल कहा है तो 21 ड्रिल, 1 घंटा मौन तो 1 घंटा मौन, 1 घंटा आत्मिक स्थिति तो 1 घंटा आत्मिक स्थिति, 1 रहम दिल कॉमेंट्री सकाश तो 1 रहम दिल कॉमेंट्री, थोड़ा समय बुद्धि की क्लीनिंग, थोड़ा समय बुद्धि की चार्जिंग, ये नया पुरुषार्थ है। तो थोड़ा समय, जितना भी समय दिया हुआ है चार्ट में श्रीमत अनुसार, वो माया चतुर है। हाँ, वो क्या करेगी पता है? कहते कि 2 मुरली सुनते हैं और बाकी अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं, ये सब बाद में, पहले ये। वो कहेगी थोड़ी ड्रिल करते, थोड़ी साकार वाणी सुनते हैं, तुम्हें लगेगा अच्छा ये तो कर रहे हम, वाणियां सुन रहे, कुछ नहीं बैठेगा बुद्धि में, क्योंकि तुमने अपने अंदर की शैतान की मत से किया, कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। इसलिए गुरु तभी करना चाहिए जब गुरु की हर बात मानने के लिए हम राजी है, वरना बच्चे गुरु ना करो महाभयानक बोझा चढ़ेगा। बहुत बच्चे ऐसे गुरु कर देते हैं और फिर मनमत पे चलते हैं, पतन हो जाता है इनका। इसलिए इतने जो गुरु हुए हिस्ट्री में, मुश्किल कोई उनके पास निकले होंगे पक्के, मुश्किल। किसी किसी के पास तो एक भी नहीं निकला, बेचारा गुरु अपनी शक्ति ट्रांसफर करके किसी को देके शरीर छोड़ के अगले पार्ट में चला गया, एक भी नहीं बन पाया उनके जीवन काल में। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसने किसी को भी नहीं बनाया, पात्र ही चाहिए था, ये तो बात है। इसलिए यहां बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बच्चे आ रहे या नहीं आ रहा है कोई, नहीं मुझे पक्के ही चाहिए, मैं क्या करूं बाकी सबको लेकर। इसलिए बच्चे तेरे अंदर बैठिए मत, तेरे अंदर, जैसे कल आत्मा किया, अपने को देखा बार बार बार, आज जैसे बाबा को देखना है परमात्मा, तो आज वापस वो मनमत कहेगी थोड़ा आत्मा भी देखते हैं ना, या फिर कहेगी थोड़ा योग लगा के देखते आत्मा परमात्मा, जितना कहा उतना ही और वही, उससे जरा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर देखो माया को बेचैनी होती है, बेचैनी होगी उससे, ये नहीं हो रहा हमसे, नहीं हो रहा, फिर भी करना है। खाना आता है तब कहा है नहीं खाया जा रहा है, अच्छा व्यंजन आया तो कहे और परोसो, 2 रोटी और लाओ, सब्जी और डालो, तब आता है बरोबर, समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं, समझदार समझ जाते बाप के महावाक्य, बाकी ना समझ नहीं समझ पाते, वो उनका ड्रामा उनका भाग्य। बाप तो सभी को समझा रहा है, आदि में भी तो सभी नहीं समझ पाए थे, क्योंकि बाप ही नहीं पता था, शिव बाप ब्रह्मा बाप कैसे समझ पाएंगे, यही तो बात है। और बच्चे तेरे अंदर का शैतान छुप छुप के तुझसे मन मत चलाएगा और तुझे गिराएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि उसने गिराया। जो खुश नहीं रह पाते ना, समझ जाना शैतान मनमत पे चला रहा है उन्हें। और किसी किसी का शैतान इतना कड़ा होता है, वो दूसरे की बात मानने के लिए राजी नहीं होता, उसे अपनी जिद चलानी है, अपना ही हठ चलाना है। अगर बच्चे तेरे अंदर जिद है, तेरे अंदर हठ है, समझ जाना तेरा शैतान कड़ा है। सबसे भयानक होता है वो शैतान, जिद वाला हठ वाला। वो शैतान कब किसको मौत के घाट उतार देगा गारंटी नहीं, उसको तो खलास कर ही देगा, दूसरों को भी करेगा। सबसे भयानक गुण है वो, मैं तो अवगुण बोल नहीं सकता, शैतान का गुण भयानक है, जिद हट, अपनी बात ही मनवानी, अपने बात पर ही पक्का रहना, और अपनी बात कोई ना माने तो नाराज हो जाना, गुस्सा आना, डिस्टर्ब होना, उदास होना, इरिटेड होना, ये कड़ा है शैतान, बहुत कड़ा है बच्चों, समझ है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, ऐसी एनर्जी जाती है तुम में। बाप कुछ कहे तुरंत इमोशनल हो जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे, ये कड़ा शैतान है, इनसे संभल कर रहना। बाप जब स्ट्रिक्ट वर्ड इस्तेमाल करे और किसी बच्चे को गुस्सा आए, नाराज हो जाए, इनसे संभल कर रहना, शैतान कड़ा है, कड़ा शैतान है वो, समझ की बात है। वो कहेंगे बाकी कुछ भी बोले मुझे कुछ नहीं लगेगा, पर बाबा कहता है तो मुझसे सहन नहीं होता, कड़ा शैतान है वो, बोलते हैं बाकी कुछ भी बोले मुझे चलता है, पर नहीं चलता, नहीं चलता, बस वो बोलते हैं, दिखावा है, और मेरा कुछ नहीं जाएगा बच्चे, मरोगे तो तुम मरोगे उस शैतान के साथ, मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा ही घाटा है बच्चे, संभल कर रहे ना, शैतान है अंदर, कड़ा कड़ा शैतान है, समझ की बात है। इसलिए बहुत बच्चे हैं अलग अलग आध्यात्मिक संस्थाओं में जाते हैं, अलग अलग गुरु किए, सारी दुनिया कहीं ना कहीं जाती है, अगर गुरु की बात ही नहीं माननी है, आध्यात्मिक संस्था के कायदे कानून ही नहीं फॉलो करने, तो क्यों जा रहे हो वहां पर, क्यों उस संस्था की बदनामी करवा रहे हो, छोड़ दो संस्था, फिर हर संस्था अच्छा सिखा रही है ना, एक भी संस्था मुझे दिखाओ दुनिया की जो बुरा सिखाती है, एक भी दिखाओ, एक भी नहीं है, हर गुरु अच्छा सिखा रहा है, उसकी बात नहीं माननी है तो छोड़ दो गुरु ना, उस गुरु ने तो तुझे बुलाया नहीं कि तू आ, वो गुरु तो तेरे घर नहीं आया था प्रचार प्रसार करने के लिए, वो संस्था तो नहीं आई थी, समझ की बात। हाँ, परिचय दिया होगा किसी ने कि इस संस्था में ऐसा ऐसा ज्ञान दिया जाता है, पर पकड़ के उठा के तो नहीं लेके गए ना तुझे ज्ञान सुनने के लिए, ज्ञान में चलने के लिए, तू ही गया ना तेरी मर्जी से, तो क्यों बदनामी कर रहा है उनकी बात ना मानकर, उनका कहा ना मानकर, समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, अगर किसी संस्था को फॉलो कर रहा है तो उसके कायदे कानून फॉलो कर, वरना संस्था की बदनामी ना कर बच्चे, भल तेरे अंदर शैतान होगा पर संस्था तो अच्छा कार्य कर रही है ना, हर संस्था अच्छा ज्ञान देकर अच्छा व्यक्तित्व बनाने की सेवा कर रही है ना, समझ है। कौन सी संस्था बुरा ज्ञान देती है जरा मुझे भी बताओ, कौन सा गुरु कहता है बुरा करो, कोई भी तो नहीं कहता। हाँ, बाकी हर किसी के अपने स्वभाव संस्कार, वो गुरु भी तो प्रयास कर रहे अपनी ऊंचाई को पाने के लिए, मनुष्य तन है तो कमी कमजोरियां सब में रहेंगी, अंत तक रहेंगी, वो तो कहीं नहीं जाएंगे, कमी कमजोरियां माया का तन है बच्चे, तू अच्छाई देख, तू किसी गुरु को नाम ना रख, ये गुरु ऐसा वो गुरु वैसा, वो क्या सिखा रहा है वो देख, उससे जीवन में क्या बदलाव घटित हो रहा है वो देख, किसी को बुरा भला ना कह, और गुरु को तो कभी ना कह किसी भी, वो उनका पार्ट है, जो भी है जैसा भी है हर प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं। हर गुरु अपने जीवन में शांति से सो सकता है, क्यों लगे हजारों लाखों फॉलोअर्स के पीछे, वो शांति से सो सकते हैं, अपनी तपस्या कर सकते हैं, अपने ऊंच पद को पा सकते हैं, पर वो हर कोई प्रयास कर रहे हैं कि इस दुनिया का हर व्यक्तित्व कैसा अच्छा बने, हर आत्मा कैसी श्रेष्ठ बने, उनको जो वर्षा मिला है ज्ञान का, ईश्वर ने उनको जो दिया है ज्ञान की जो सौगात दी है, उसको लेकर हर रूप से प्रयास कर रहे हैं, कोई भटका नहीं रहा है, अच्छे ही कर्म सिखा रहा है, पर लोग उठ के हर गुरु को नाम रख देते हैं, ये गुरु ऐसा वो गुरु वैसा, बच्चे तेरी क्या औकात तू किसी गुरु को नाम रखे, तेरी क्या औकात, तेरी क्या हैसियत, तुझे ABCD नहीं आती और तू किसी गुरु को नाम रख रहा है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मुझे भले कोई गाली दे दे, वो तो मैं 2500 साल से खा रहा हूं, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अध्यात्म के रूप में दुनिया को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर रूप से ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं, हिम्मते मर्दा। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, तुम नंगे यानी अशरीरी आए थे, फिर यह शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया है, अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगेंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही है फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो तुम चुप रहो, तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, बाप समझाते हैं। बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भाइयों यानी आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ, भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। बच्चों देखो, एक बात याद आए, तुम अगर श्रीमत पर चलते हो ना तो तुम्हारे अंदर शैतान नहीं रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम शैतान से छूट गए। दूसरे का शैतान तुम्हें परमत पर चलाने की चेष्टा करेगा, संभल कर रहे ना। दूसरा तुम्हें कुछ भी कहे, एक ही बात पूछनी, बाबा से श्रीमत लिए, श्रीमत ये शब्द उच्चारण करते ही उसके अंदर का शैतान भाग जाता है, ये श्रीमत की अथॉरिटी है। वो तुम्हें कुछ भी कहेगा। कल किसी ने कहा किसी को, ये लैपटॉप वहां रख दीजिए, बाबा से श्रीमत लिए, ये कैमरा लगा दीजिए, बाबा से श्रीमत लिए, सबके भोजन की व्यवस्था करनी है, बाबा से श्रीमत लिए, ये चटाई डालनी है, बाबा से श्रीमत लिए। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, यज्ञ की सेवा भी कहे तो भी, हाँ किसी को कहा है, जैसे भंडारी वाले बच्चे हैं उनको कहा है जो चाहे कहो, तो श्रीमत दे चुकी है, बाप ने श्रीमत दे दी। वो बच्चे कहे किसी को, चलो जरा रोटी बनानी आ जाओ,
जाना है, वहां पूछने की जरूरत नहीं कि श्रीमत ली है क्या, वो तो बाबा ने दी है सेवा की। बाकी सारी बातों में पूछना है घड़ी 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 घड़ी। ये मुरली का जो पानी का ग्लास है, ये टोली है, कोई भी नहीं रख सकता। तुम्हें कोई कहे अब जरा टोली लाएंगे, श्रीमत ली है बाबा से कि हम ला सकते कि नहीं। वरना बाप ने तो सेवा दी है ना किसी को, कि कौन टोली भर सकता है, कौन पानी भर सकता है, कौन माइक लगा सकता है, कौन कैमरा लगा सकता है। मनमत पे कुछ भी आया, अकल्याण हुआ, तो दूसरे के अंदर का शैतान तुम्हें चलाने की चेष्टा करेगा। संभल कर रहना, संभल कर। और अभी थोड़े समय में ऑर्डिनेंस निकलेगा, मनमत चली कि शैतान के साथ तुम भी चलते बने। मुबारक हो तुम्हारा शैतान तुम्हें। करो अभी जो चलानी चलाओ, जो करना है करो, अपने घर में बैठकर मन के अनुसार जो करना है करो। समझ है बच्चों, यही तो खेल है, समझ की बात है। श्रीमत सबको समझ में नहीं आएगी, ऐसे ड्रामा है, वंडरफुल है। बाकी बच्चे तुम्हारी अपनी मर्जी, चलना है साथ तो श्रीमत पर चलो, नहीं चलना है तो शैतान की मत पर चलो, मन मत पर। तुम्हारे ही फायदे की बात है, बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुँह को देखेंगे ना, तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो, अंत मते सो गति हो जाएगी। यह अंतकाल है ना, मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है, बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। एक नंबर, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। दो नंबर, कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, कभी सेट होते कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो भी शक्तियाँ हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग के लो। अच्छा, ओम शांति।
वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह, वहारे में आत्मा वाह, वहारे मेरा भाग्य वाह, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।